ਕੌਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਉਸ ਮੁਸੀ ਦੇ
ਆਮੀਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਇਰ ਬਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਕੱਲ वो 24 बुजुर्गों अर्थात 27वां पार्ट नंबर 27 उसको कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हम 24 बुजुर्ग तक हमने पढ़ा, 24 भविष्यवाणियों के बारे में हमने पढ़ा, अभी 14 भविष्यवाणियों तक हमने पढ़ा, अभी 15वां भविष्यवाणी देख लेंगे। 15वां बुजुर्ग जिन्होंने परमेश्वर ने अपने शब्द ओबदिया भविष्यता के मुंह के जरिए से प्रकट किया, ओबदिया 21 पढ़ेंगे। ओबदिया 21
दार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए राज्य यहोवा का हो जाएगा।
तो ये एक और आश्चर्यमंद भविष्यवाणी वचन है और वचन कहता है कि ओबदिया 21 आखिरी वचन, ओबदिया आखिरी वचन दोबारा पढ़ लेंगे बोलते हैं, लेकिन यहाँ उद्धार करने
वाले
करने वाले अनेक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बताता है वो समय जब परमेश्वर के राज्य बहुत क्या बोलता है क्लियर तरीके से प्रकट हो जाएगा। मतलब इसको इंग्लिश में कहता है द क्लियर एंड विजिबल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम विद जीसस एंड हिज चर्च इन ग्लोरी। मतलब ये बहुत ही साफ तरीके से प्रकट होगा परमेश्वर के राज्य देखे जैसे स्थिति में जहां यीशु के बाद उसके कलीसिया दोनों साथ में महिमा में। तो जैसा यीशु उद्धार करने वाला हम मानते हैं उस वक्त मालूम हो जाएगा कि उद्धार करने वाले हैं, मतलब यीशु के साथ साथ उनके कलीसिया, उनके शरीर, उनके दुल्हन 144,000 जो महिमा पे चढ़ जाएंगे। तो ये बताता है 16वां भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य के बारे में, प्रतिज्ञाओं के बारे में जो भविष्यवाणी हम पढ़ भी अगले भविष्यता योना भविष्यता के मुंह से प्रकट हुआ परमेश्वर के बातें। योना चौथा अध्याय वचन 10 और 11।
तब यहोवा ने कहा जिस रेड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ और तूने तरस ना खाई उस पर तूने तरस ना खाई है। फिर ये बड़ा नगर नैनवे जिसमें 120,000 अधिक मनुष्य हैं जो मनुष्य दहने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहें, तो मैं उस पर तरस ना खाऊं या मैं उस पर तरस ना खाऊं।
तो यह बात जो योना की हादसा को हम देखते हैं जहां योना को परमेश्वर कहता है नीनवे नगर को जाओ और ऐसा संदेशा दे दो, और आपको जानता है वो सारा जो हुआ उसके बाद घटना। लेकिन यहाँ इस वचन 10वां और 11वां वचन में परमेश्वर बात कर रहा है, योना से सवाल पूछ रहा है कि क्या इस नीनवे नगर पर जहाँ 120,000 लोग हैं और घरेलू जानवर भी है, क्या मैं इनके ऊपर तरस ना खाऊं? आपके पास तरस नहीं है, वो तो दिखता है, लेकिन इनको तरस ना खाऊं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? यहां निनवे का नगर ये इसराइल का कोई नगर नहीं था, ये तो अन्य जाति वाले एक देश था। तो निनवे के बारे में यहां जो परमेश्वर बोल रहा है इसका मतलब क्या है? जरूर निनवे को कोई सिन का मतलब होना चाहिए, और उस बात को हम पता करता है जब कहता है कि निनवे लोग अपने बाएं हाथ से और दाएं हाथ का फर्क नहीं समझते, है ना, अपने बाएं हाथ और दाहिने हाथ का फर्क नहीं समझता है। इसका मतलब क्या है? बाएं हाथ का मतलब क्या है? बाएं हाथ का मतलब है सत्य और दाहिने हाथ का मतलब है असत्य। राइट लेफ्ट, राइट राइट, बाएं हाथ सत्य और दाहिने हाथ असत्य, क्योंकि अब राइट तो ट्रूथ, लेफ्ट तो अनट्रूथ। आपको जानता है वो मत्ती 25वां अध्याय की बात, जब राजा आएगा और भेड़ और बकरी, जी 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 जी, दोनों तरफ दो, जी दोनों तरफ रखेंगे, वो उधर से हम मालूम हो जाता है। तो बाएं और दाहिने, सो बाएं और दाहिने हाथ का फर्क नहीं समझता, इसका मतलब है ये कौन है ये लोग, ये तो क्या है, दुनिया तो सच्चाई और असत्य की फर्क ही नहीं समझता है। वो उन लोगों का स्थिति अभी कैसा है, वचन में पढ़ते हैं यशाया 60:2, यशाया 60:2 दूसरा वचन, यशाया 60:2 दूसरा वचन,
देख पृथ्वी तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर जोर घोर अंधकार छाया हुआ है।
हाँ देखो, बस 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 बस, तो पृथ्वी पर अंधेरा और राज्य राज्य में घोर अंधकार, तो इसके मतलब क्या है कि सारा दुनिया में अभी असत्य छाया हुआ है। ये स्थिति क्यों, ऐसा स्थिति कैसे लग गया है, ये दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में हम ये बात पढ़ते हैं, जहां हम मालूम करते हैं कि दुनिया ऐसे स्थिति में कैसे पड़ गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4,
और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है,
इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। तो ये बहुत साफ तरीके से समझ गया है कि लोगों का बुद्धि अभी अंधा हो गया है। किसने किया लोगों का बुद्धि अंधा? इस दुनिया का ईश्वर, मतलब शैतान। शैतान ये तरीका कैसा किया, ये काम का किया, ये वचन में पढ़ते हैं, एक और वचन में यशावा में, यशावा 5:20 कि शैतान ने अर्थात इस दुनिया के ईश्वर इस बात कैसा किया लोगों का बुद्धि,
यशाया
5:20 लोगों का बुद्धि कैसा अंधा कर दिया।
उन पर जो गुरुओं को बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं,
देखो भले को बुरा और बुला को बुरा को भला कहता है। तो ये उलझन में दुनिया है, जो चीज अभी दुनिया जो भला कहता है असल में वो बुरा है, और जो चीज अभी दुनिया बुरा कहता है असल में वो भला है। तो ये उलझन शैतान लाया है, दुनिया ऐसे उलझन में है, और ये स्थिति बताता है निनवे के नगर के बारे में कि निनवे के नगर के लोग अपने बाएं हाथ और दाहिने हाथ का फर्क नहीं समझा। अभी इसका मतलब क्या है, निनेवे का एक तस्वीर है सारा दुनिया, और परमेश्वर इस दुनिया को एक तरस का रहा है, मतलब एक एक दया अधिकार, परमेश्वर अपने दयालु से एक दयाल दया बरे एक नहीं एक योजना रखा है, लोगों को बचाने के लिए एक योजना रखा है, परमेश्वर का योजना जो सारा मनुष्य जाति को परमेश्वर उनको बचाने के लिए एक योजना रखा है, वो तो हम सच्चाई में हमने पढ़ लिया है। प्रभु यीशु उद्धार करने वाला है सारा दुनिया का, जैसे आदम ने ये उद्धार हुआ, जी आदम ने सब सब हुआ, तो अभी ये बात वचन बता रहा है। लेकिन एक और बड़ा सच्चाई इस वचन में क्या दिया है कि निनवे के लोग की संख्या 1,20,000, इसका मतलब कुछ है, अगर कुछ मतलब है हम सोचते हैं, क्योंकि 1,44,000 तो असली संख्या है कलीसिया को, वो तो उसका कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया का हिसाब 1,20,000 तो हम बिल्कुल मान नहीं सकते, क्योंकि अभी जलंधर भी 1,20,000 से ज्यादा है लोग ना, तो ये 1,20,000 संख्या का मतलब क्या है, इसका हिसाब के अंदर कुछ न कुछ मतलब परमेश्वर रखा होगा ना, तो इसका मतलब है, बहुत ही गहरा मतलब है। जैसा आपको जानता है हमारा परमेश्वर जब अपने वचन हमारे को दे दिया है, इस वचन में बहुत सारे रहस्यों, बहुत सारे वेद जो है परमेश्वर ने चिन्ह के भाषा में छिपाए, और ज्यादातर जो चिन्ह जो हम पढ़ता है वो सब प्राकृतिक चीजों हैं, आसमान, पेड़, पानी, आग, हवा, वो सब जो है ना, वो सब जो चीजों जो प्रकृति में है परमेश्वर चिन्ह के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर एक और चीज भी चिन्ह को इस्तेमाल करता है, और वो है संख्या, नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 7, वो सारा परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं चिन्ह के द्वारा। अभी अभी हम देख लेंगे कि यहाँ 1,20,000 के अंदर एक बात है जो हम पहचान सकेंगे जब हम संख्या का चिन्ह समझेंगे। तो संख्या के चिन्ह देखते वक्त यहाँ तो हम क्या देखता है, यहाँ तो देखता है ये इस जगह में एक तरफ तो 6 है, 6 नंबर का मतलब है अभी मनुष्य का स्थिति जो अभी गिरे हुए और इम्परफेक्ट, मतलब जो परिपूर्ण नहीं स्थिति में, अपरिपूर्ण स्थिति में जो लोग है उसको 6 का नंबर है, और 10 एक और नंबर है जो सारा दुनिया का नंबर है, मतलब 10 कुंवारियां, और जकरिया में 8:25 जहां हम देखते हैं कि 10 लोग हर एक जाति से एक यहूदी को पकड़ के उसके कपड़े को पकड़ के बोलेंगे हम जान गया है कि परमेश्वर तुम्हारे पास है, लो हम तुम्हारे पास तुम्हारे साथ आएंगे, चाहे तो वो वचन पढ़ लो, जकरिया 8:25 जकरिया 8:23
सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी के वस्त्र चोर को ये कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
हाँ, तो ये 10 वही इधर आता है, 10 कुंवारियां भी आता है, 10 आज्ञा भी है,
10 आज्ञा 10
राजे जी जी जी, तो इसका मतलब है 10 का पूरा पृथ्वी का नंबर है, पूरा पृथ्वी, इट मींस कंप्लीटनेस ऑफ द अर्थ। तो अभी यहाँ एक तरफ 6 और एक तरफ 10, अभी देखो 6 का मतलब है मनुष्य जो अभी के स्थिति में अपरिपूर्ण स्थिति, और 10 मतलब कंप्लीट। अभी 10 चार तरफ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो चार तरफ अगर आप 10 रखें और इसका पूरा गिनती अगर लेना है तो 6 × 10 60 × 10 600 6 × 10 6000 और 6000 × 10 60000 तो 6 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60 10 से मल्टीप्लाई करें तो 600 से 10 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 और जो दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60000 चार तरफ का 10 और 6 एक तो ये 60000 अभी 120000 में कितने 60000 है 2 है ना 2 इसका मतलब है परमेश्वर ही सारा मनुष्य का इतिहास 2 भाग में बंटवारा किया मसीह से पहले मसीह के बाद है ना बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट क्योंकि मसीह के पहले के लोग के जो स्थिति कैसे था मसीह के बारे में कभी नहीं सुना लेकिन मसीह के बाद के लोग मसीह के बारे में सुना लेकिन उसके उसके इसको उसके रिएक्शन अलग अलग थे तो दोनों बड़ा क्यों पलट किया कि टाइम समय ही परमेश्वर ऐसा बंटवारा कर दिया पूरा मनुष्य का इतिहास मसीह से पहले और मसीह के बाद ये भी 60000 और वो भी 60000 मतलब इसका मतलब है पूरा का पूरा मनुष्य जाति द कंप्लीटनेस ऑफ द ह्यूमन रेस तो ये पूरा का पूरा मनुष्य जाति इस दो हिस्से में है दोनों 60000 है और इससे बनता है 120000 तो ये 120000 निनेवे नगर का
इन्होंने 600000 निकाला हुआ है
किधर से
लिखा कि तो वहां की जनसंख्या 600000 होनी चाहिए
किधर लिखा है
टिप्पणी में लिखा
है टिप्पणी में लिखा है लेकिन लेकिन असली वचन कहता है 120000
नहीं मतलब 120000 जैसे ना उन्होंने बड़ा नगर जिसमें 120000 से अधिक मनुष्य सिर्फ लिखा
जी जी जी
मनुष्य थे
जी 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 जी
जो अपने दाहिने बाएं हाथों का नहीं पहचानते
जी 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 जी
और बहुत से गिरे जो पशु के पशु अलग से मनुष्य मनुष्यों का 120000
जी 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 नहीं हमें हम लोग हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर या ऐसा संख्या देने की मतलब क्या है हम तो जान गया है कि निनेवे का मतलब है पूरा दुनिया तो पूरा दुनिया का मतलब होते वक्त ये 120000 का संख्या का मतलब क्या हो सकता है तो इसको क्या हो सकता है दो 60000 ये 60000 ये 60000 और हाँ जी और 60000 का मतलब आता है 6 और 10 से तो ये बात तो हम यहाँ देखता है इस बात में जहाँ योना के जरिए से परमेश्वर ये सच्चाई बताता है और दुनिया के बारे में रहम वाले परमेश्वर ने अच्छी और खासदार का योजना परमेश्वर ने रखा है सारा दुनिया के लिए अभी 17वां बुजुर्ग और 17वां भविष्यवाणी जो अगले भविष्यता मीका भविष्यता के मुंह से प्रकट हुआ मीका 4 अध्याय 1 और 2 वचन
अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत से जातियों के लोग और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर यकूब चढ़कर यकूब के परमेश्वर के भवन पर जाएं तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पत्थर पलेंगे क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा
देखो ये वचन बताता है दोबारा वो बात परमेश्वर के राज्य के बारे में सिय्योन के बारे में बताता है कि कैसे परमेश्वर के राज्य स्थापित होंगे और स्थापित होने के बाद सारे दुनिया के देशों पहचानेंगे और सारे दुनिया का देशों ढूंढ के आएंगे और ढूंढ के आते वक्त ये दुनिया के देश वाले देख लो उनके कहने के बाद क्या है, चलो हम परमेश्वर के पहाड़ को जाएंगे, चलो हम परमेश्वर के राज्य को जाएंगे, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो खुद अपने मर्जी में, खुद अपने मर्जी में वो आ जाएगा ढूंढ के परमेश्वर के राज्य। और वो ना सिर्फ उनके बातें में हम देखता है, वो बोलेगा कि परमेश्वर उनके मार्ग हमारे को बताएगा, उनकी शिक्षा हमारे को बताएगा और हम उस शिक्षा के मुताबिक हम चलेंगे। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि
यही वर्षिस दो तीन बार
बिल्कुल दो और दो तीन
का तीन में
और एक एक और 60 के बाद
54 का 53 में 42 का 14 में
सर, इसके इसके खासियत क्या है कि दुनिया अपने में आएंगे,
क्योंकि ये वर्षिस मुझे इसलिए याद है, एक बार मैं दिल्ली गया तो उस वहाँ पर कुछ इसराइल के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने ये वर्ष लिखा हुआ था दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर,
तो वो पहले बार आपने देखा उस वक्त वो वचन?
हाँ
ओके ओके,
तो तब से मुझे ये याद, फिर मैं वहाँ से तब से मेरे
सोचने शुरू हुआ
कि यहाँ से लोग वो उस मंदिर को जाएंगे, उधार यहीं से है।
जी। आपको बहुत ताज्जुब आ गया होगा और हलचल, ये क्या हो रहा है, ये तो कभी हम किसी को नहीं सिखाया, इसको कैसा हो सकता है, है ना।
फिर मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं कि हम कुछ इसराइली आए थे तो उन्होंने ये लिखाया, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये इसका मतलब
नहीं लिखा, ये वचन से लिखा है। लोग भी कितना चतुर है देखो, चालाक है, मार कर है।
पूरी दीवार पर थोड़ा मोटा मोटा करके वो कहता है, यार उन्होंने अब लिख दिया, वो इसको जब हम व्हाइट वॉश कराएगा सब
चालाक है ये लोग, देख देख। तो ये वचन बड़े बढ़िया वचन है जो बताता है दुनिया उस वक्त मौका मिलेगा, परमेश्वर के राज्य को पहचानेंगे, बिके आएंगे, और वो न सिर्फ उनके बातचीत और उनके मन के स्थिति कैसे होंगे, बोलेंगे परमेश्वर हमारे को बताएगा उनके रास्ते और हम खुद ही उनके रास्ते में हम चलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात जो हम देखते हैं, आज हम कोशिश हर दिन कर रहे हैं परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए, लेकिन दुनिया भी ऐसे ही होंगे करके हम वचन पढ़ते हैं। तो ये 17वां बुजुर्ग, 17वां भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य के बारे में, 18वां बुजुर्ग, 18वां भविष्यवाणी नहुम भविष्यता के जरिए से प्रकट हुआ, नहुम में पहला अध्याय और 15वां वचन, नहुम 1:15।
देखो पहाड़ों पर शुभ सुषमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है, अब हे यहूदा अपने परम मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा कभी तेरे बीच में से होकर ना चलेगा और पूरी रीति से नाश किया हुआ है।
तो अभी दोबारा पढ़ो, हिंदी में थोड़ा अनुवाद का प्रॉब्लम है, शुरू में पढ़ लो।
पहाड़ों पर शुभ सुषमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है।
नहीं, ये अंग्रेजी में आता, बिहोल्ड अपॉन द माउंटेन्स द फीट ऑफ हिम, अलग 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 है। तो पहाड़ों पर लो उनका पैर, उनका पैर, उनका पैर, जी 52 सेकंड 7 5 52 7 बिल्कुल वही वचन कौन उसका 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 सेम वचन है द फीट ऑफ हिम अंग्रेजी में आता आपके पास अंग्रेजी बाइबल है ना देख लीजिए द फीट ऑफ हिम Behold upon the mountains the feet of him. Nahum 1:15. Okay. Nahum 1:15. पंजाबी में ही दिखेगा इंग्लिश में नहीं दिखा
Behold upon the mountain the feet of him.
The feet of him. So ये सबसे बड़ा समस्या
जब यहाँ पर मैंने ये शुरू किया ना तो मैं भी सोचता था कि ये कुछ गलत दिया हुआ है ऐसे होना चाहिए
बहुत सारा हिंदी में उल्टा सीधा अनुवाद
के पाँव कैसे सुहावने हैं जो सुसमाचार लेकर
जी शांति शांति का सुसमाचार तो ये उनका जी उनका पैर का मतलब है प्रभु यीशु के पैर प्रभु यीशु के पैर का मतलब है कलीसिया के अंतिम सदस्यों तो वो उनको पैर कहता है द फीट क्लास सेंट जो कहता है वो बाद में हम और भी उसका गहराई देखेंगे 45 क्लास में तो यहाँ तो बहुत खास तरीके से बता रहा है कि आखिरी छह लोगों के लिए एक खास काम है और वो खास काम क्या है कि हर जगह हर दुनिया में के वो प्रकट करना है क्या प्रकट करना है वचन बोलता है अच्छे खबर प्रकट करना है उसके बाद शांति प्रकट करना है तो अच्छी खबर और शांति अच्छी खबर है परमेश्वर के उद्धार का योजना सारा दुनिया के लिए रखा योजना जैसे जैसे आजकल हमारे मसीह दोस्तों जो नहीं जानकर क्या क्या की परमेश्वर की योजना के बारे में बताता है जैसे योजना अभी सिर्फ हमारे लिए है और दुनिया के लिए कुछ भी बाकी नहीं है ऐसा तो परमेश्वर वचन में नहीं रखा है तो ये बात अभी असली मसीह के छे ये बात प्रकट करने के लिए मौका मिल रहा है मतलब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है द गुड न्यूज खुशखबरी तो ये खुशखबरी प्रकट करेंगे इन लोगों इन आखिरी चेलों जो प्रभु के पैर है मतलब जैसा प्रभु सर है गर्दन 12 चेले है और उसी तरह से कलीसिया बढ़ने लगा अभी हम किधर पहुंच गया है पैर पहुंच
होते हम पैरों
जी हम उधर तक पहुंच गए तो इसलिए उसका पैर बोल गया है और अगले हम देखेंगे अभी 19वां भविष्यवाणी जो हबकुक भविष्यता के मुंह से प्रकट हुआ बात हबकुक 2:14
क्योंकि यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र के जल से भर जाता है
हाँ ये एक और बात जो दूसरे जगह में भी आता है यशायाह में भी आता है बिल्कुल तो ये हबकुक तीर भविष्यता की मुंह से प्रकट हुआ ये बात जो बताता है कि कैसे परमेश्वर के योजना में परमेश्वर योजना रखा है कि सारा पृथ्वी उनके ज्ञान से उनके महिमा के ज्ञान से भरेंगे तो उनके महिमा के ज्ञान भरेंगे का मतलब क्या है इसका महिमा के ज्ञान के भरेंगे का मतलब ये है कि परमेश्वर उचित समय में ये सारा दुनिया को ज्ञान देगा अपने बारे में और अपने योजना के बारे में लेकिन हमारे को यहाँ एक बात हम पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर के महिमा
पांच बार दी गई है।
जी जी देखो देखो
चैप्टर में
देखो देखो
पांच बार
जी तो इसमें कुछ ना कुछ महत्व है होगा इसमें। तो इसमें एक बात जो हम ध्यान करते हैं, इधर न सिर्फ ज्ञान की बात दिया है बल्कि यहाँ दिया है परमेश्वर के महिमा के ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर के महिमा के ज्ञान कहते वक्त द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर प्रभु के महिमा, प्रभु के महिमा कौन है, कुछ मतलब क्या कुछ मतलब हम लेते हैं इसे प्रभु के महिमा, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो ये बात सोचते हुए हम निर्गमन 33, 28 और 22 पढ़ेंगे, एक्सोडस 33, 18 और 22। निर्गमन 33, 18 और 22।
मुझे अपना तेज दिखा। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान दरार में देखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर से निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा।
तो यहाँ दिया है कि मेरा तेज तुम्हारा सामने जाएंगे, और मेरा तेज तुम्हारे सामने जाते वक्त मैं तुमको एक चट्टान रार में रखूंगा, और मेरा हाथ से आपको रखूंगा, और ऐसे ही मेरा तेज तेरे सामने चलेंगे। तो परमेश्वर यहाँ अपने तेज के बारे में, मतलब माई ग्लोरी अंग्रेजी में कहता है माई ग्लोरी। तो यहाँ वचन में हम पढ़ता है कि मूसा ने परमेश्वर के तेज के पीठ देखा, ही सॉ द बैक ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, पीछे आगे। तो इस तेज का मतलब क्या है, इस वचन का एक ताजुबी क्या है कि मूसा पूछ रहा है सर कि मैं आपका तेज देखना है, और परमेश्वर दो इंतजाम करता है कि अपने तेज तुम्हारे सामने जाएगा, लेकिन मैं तुमको एक चट्टान के दरार में रखूंगा और मैं हाथ में आपको पकड़ूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर अलग और उनका तेज अलग, क्योंकि परमेश्वर मूसा को एक चट्टान के दरार हाथ में पकड़ेंगे और अलग से उस मूसा के सामने जाएंगे परमेश्वर का तेज।
उसका जी
जो है जी अलग अलग जाएंगे,
ग्लोरी अलग है उसका।
यस यस, तो इससे मालूम हो गया, इससे हमको एक शक आ गया कि परमेश्वर और परमेश्वर का तेज अलग अलग कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात हम समझ गया जब नया नियम पढ़ा, और नया नियम में हम पढ़ते हैं अभी योहन्ना पहला अध्याय और 14वां वचन, योहन्ना पहला 14। योहन्ना अध्याय 14वां वचन,
उस वचन और वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा।
अभी महिमा और तेज दोनों एक ही शब्द होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में ग्लोरी और ग्लोरी है, लेकिन हिंदी में ऐसे कंफ्यूजन डाले तो हमारे को कुछ उलझन हो जाता है। इंग्लिश में ग्लोरी, इधर भी ग्लोरी, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता है, लेकिन हिंदी में उधर तेज और यहाँ महिमा, तो हम कनेक्शन नहीं, हमको कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर अंग्रेजी में किया जाए कनेक्शन आ जाता है। तो मूसा जो परमेश्वर का तेज देखा ना, वो तेज है प्रभु यीशु। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिखाया किसको? मूसा को, और सामने पीछे पीठ, सिर्फ पीठ दिखाया, प्रभु यीशु उनके सामने गया। उसके बाद वो तेज देहदारी हुआ, वो वचन देहदारी हुआ, और वो वचन प्रभु का इकलौता पुत्र, उसका महिमा, उसके इंग्लिश में बार बार ग्लोरी आता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, पता नहीं इसका सही अनुवाद हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ। ये केजीवी कितना ब्यूटीफुल, देखो पढ़ो।
एंड द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड अमंग अस एंड वी बीहेल्ड हिज ग्लोरी द ग्लोरी एज ऑफ ओनली बिगटन ऑफ द फादर फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रुथ।
द ग्लोरी ऑफ द ओनली बिगटन ऑफ द फादर। तो ये बात, ये है वो तेज जो मूसा ने देखा है, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा। और यहाँ जो हम अभी पढ़ा हबक्कूक में, परमेश्वर के प्रभु के महिमा के ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब क्या है? ये दुनिया भरेंगे पहला प्रभु यीशु के ज्ञान में, क्योंकि हमेशा परमेश्वर के
ने पढ़ा वो परमेश्वर के ज्ञान में जो कालीगम ने
पढ़ा। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, क्योंकि कोई परमेश्वर के साथ साथ के साथ के पास सीधा नहीं जा सकता, सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए से। तो पहला इस दुनिया को प्रभु यीशु का परिचय होना है, और जब ये प्रभु यीशु के परिचय हो जाता है और प्रभु यीशु से वो ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद ही पिता परमेश्वर से मिलेंगे।
आज इस वर्ष को आपने खोला, हमने कई बार देखा तो क्या हमने इस बात की, और अब कई बार हमने 114 देखा कि परमेश्वर ने उसकी महिमा को प्रकट किया। अब महिमा का
यहाँ तोड़ा वहां तोड़ा यही है रहस्य है। तो परमेश्वर का महिमा है उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान ये सारा दुनिया में भरेंगे, क्योंकि जब तक ये दुनिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं समझे, परमेश्वर के बारे में समझने की गुंजाइश ही नहीं है। तो सारा दुनिया प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से भरना है। और बात है जो मैं बताऊंगा, ये भी एक शायद आप ये वचन आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं बताऊंगा वो वचन, वो भी ताज्जुब वाली वचन। दुनिया को जब दुनिया के आंख खुल जाता है, वो पहला यीशु देखेंगे, बाद में परमेश्वर देखेंगे, लेकिन यीशु अपने ईश्वर के नजर में देखेंगे। ये तो यशाया 25:7, यशाया 25:7, यशाया 25:7।
और जो परम सत्ता सब तो
आठ 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 25:8
मृत्यु को सदा
नहीं नहीं नौ प्लीज फॉरगिव।
और
उस समय
ये कहा जाएगा हमारा परमेश्वर यही है।
देखो हमारा परमेश्वर यही है, ये तो पिता नहीं है, ये तो यीशु है। पढ़ो,
हम इसी की बात जोर से आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है।
अंग्रेजी में यहोवा यही है, तो
उसकी बात जोर से आए हैं और हम उससे उधार पाकर मगन और आनंदित होंगे।
नहीं अच्छा कृष्ण ने बेकार कर दिया, मर्डर कर दिया सारा आइज़ाया 25:9 क्या से करते, जब नहीं कर सकते बोलो नहीं कर सकते, छोड़ दो काम, क्यों ऐसा काम करते हैं? परमेश्वर के वचन बदलते हैं। Isaiah 25:9 पढ़ लो
आप पढ़ना
है. एंड इट शैल बी सेड इन दैट डे लो दिस इज आवर गॉड एंड वी हैव वेटेड फॉर हिम एंड ही विल सेव अस.
देखो एंड ही विल सेव अस, इसका मतलब है ये हमारा उद्धार करना है.
पर यहाँ लिखा वह हमारा उद्धार करे, मुल्क वाला है.
तो देखो ये ऐसा करे तो हिंदी वाले का क्या हाल होगा.
यहोवा यही है.
अगले यहोवा नहीं आता. दिस इज द लॉर्ड, इसका मतलब अंत में शुरुआत में दिस इज आवर गॉड प्रभु यीशु एंड ही विल सेव अस, वो हमारा उद्धार करने वाला. लेकिन चलते 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 हजार साल के अंत में जब प्रभु यीशु को उनको परिचय करेंगे पिता परमेश्वर, उस वक्त बोलेगा लो ये हमारा प्रभु है, जो कैपिटल एल ओ आर डी लिखा है उधर. देखो अंग्रेजी में देखो कैपिटल एल ओ आर डी मतलब पिता परमेश्वर. दिस इज द लॉर्ड. उसके बाद
वी हैव वेटेड फॉर हिम.
हाँ इनको भी आई वी डिड नॉट नो, नाउ वी हैव वेटेड फॉर हिम एंड
ही विल बी ग्लैड एंड रिजॉइस हिज इन हिज सेल्वेशन.
वी विल बी ग्लैड एंड रिजॉइस इन हिज सेल्वेशन, क्योंकि इन्होंने उद्धार का योजना बना. पहला उद्धार करने वाला से मिला, अंत में उद्धार का योजना बनाने वाले से मिलेंगे. देखो कितना फर्क है, कितना फर्क है. ये ऐसा ऐसा अंग्रेजी हिंदी में ऐसा लिखा है जैसा परमेश्वर और यहोवा दोनों एक है. उस वचन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर और यहोवा दोनों एक है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्सोडस 33 एक्सोडस 33 18 और 22. तो ये बात साफ तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर क्या महिमा, उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान सारा दुनिया में बढ़ जाएंगे.
इस वर्ष में जो कुकरी दिया आज टोटली क्लियर हो गया के बारे में.
जी जी. लेकिन अनुवाद इज वेरी डिजास्टर्स है ना. किसने किया ये बाइबल सोसाइटी से पूछना. जब नहीं कर सकता छोड़ दो, काम मत करो ऐसे काम. ये लोगों को उलझन में लेके जाता है. आओ अलग अलग अनुवाद होगा. मैथ्यू 20 आइजाया 25:9 और 9.
उस समय ये कहा जाएगा देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम
बढ़िया है ट्रांसलेशन है.
इसकी बात जोड़ते आए हैं हमारा वह हमारा उद्धार करे.
जी वह हमारा उद्धार करे. बराबर है. ये फर्स्ट क्लास बाइबल में लगता है. एक्यूरेट ट्रांसलेशन है. ओके
यहोवा यही है.
ओके एक्चुअली यहोवा यही है. नहीं होना चाहिए.
यहोवा यही है, हम कुछ बात जोड़ते आए हैं और उसका उद्धार पाकर मगन और आनंदित.
सब अच्छा है. यहोवा यही है के बदले से यही है हमारा प्रभु.
ऐसा यहोवा नहीं प्रभु आना चाहिए.
प्रभु आना चाहिए. यही है हमारा प्रभु.
यही है हमारा
प्रभु. वो यही है हमारा परमेश्वर. यही है हमारा प्रभु. क्योंकि दुनिया पहला प्रभु यीशु को अपने परमेश्वर कबूल के अंदर घुसेंगे. साल में एक और वचन अभी मैं बताऊंगा आपको जो और भी प्रकाशित होंगे. आप शायद बहुत बार उस वचन पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं अभी बताता हूं उसे अजीब तरीके से. प्रकाशित वाक्य में 22वां अध्याय और 17वां वचन में बोलता है आत्मा और दुल्हन कहता है आ. आत्मा और दुल्हन कहता है आ. अरे आत्मा क्यों जी. परमेश्वर प्रभु ही हमको बताया कि परमेश्वर एक आत्मा है. योहन्ना 4:24 परमेश्वर एक आत्मा है. तो हजार साल में परमेश्वर के जगह लेंगे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु परमेश्वर बन जाएंगे और प्रभु के जगह लेंगे दुल्हन।
एक और वर्सेस यहाँ पर है 35:2, उसमें और भी वह अत्यंत प्रतिकूल ही शोभा लबदोन की सी होगी और कमरेल और शमरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। ये यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज है। हमारे परमेश्वर का तेज देखिए।
प्रभु पिता पद के बारे में हमारे तो शब्द तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए हम इस्तेमाल कर सकता है।
सैंतीस दो
ये तो इशाया से। हाँ इधर है, दे शैल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड,
ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड
कैपिटल LORD एंड द एक्सलेंसी ऑफ आवर गॉड। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये देखा जो जो
परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट।
बिल्कुल यहाँ भी एक एक बात जो इंडियनाइजेशन ऑफ द बाइबल में बताता हूँ इंग्लिश में अगर देखा जाए द ओनली बिगॉटन सन हु इज इन द बूजम ऑफ द फादर, ऐसा आता है।
अच्छा
अच्छा इधर छाती पर
छाती पर,
लेकिन इंडियन इंडियन तो बच्चे इधर नहीं डाल, यहाँ गोद गोद में डालते हैं, तो इधर इंडियन देश में तो बाइबल गोद लगा दिया इधर। तो एक किया तारा
नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम द ओनली बिगॉटन सन व्हिच इज इन द बॉसम ऑफ द फादर।
So this is the Indianization of the Bible. South के languages में भी ये देखा है क्योंकि हम लोग गोद में रखता है तो गोद लगा दिया है, लेकिन असली में कहाँ है बूजम, बूजम ये है बूजम child,
क्योंकि ऐसे अगर हम इस भेद को और भी जानना चाहें तो जैसे लोहदा का साधा हमेशा
छाती
पर रहता।
जी 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 जी
जी तो छाती का क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय देश देश के लोगों में एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाते हुए उसकी सेवा करें।
तो ये बात भी हम पढ़ते हैं, ये यहाँ जफनिया की मुंह से यहाँ परमेश्वर बता रहा है उनके क्रोध के बारे में, उनके क्रोध के बारे में, उनके न्याय के बारे में। जब कहता है कि क्रोध के दिन में वो उठेगा और उठते ही सारे पृथ्वी को उनके उनके जलन के आग के बसम करेंगे। तो सारे पृथ्वी का मतलब क्या है? सारा संगठनों, संगठनों जैसे
पृथ्वी पर सारे संगठन,
क्योंकि हम जानता है परमेश्वर। और पृथ्वी का मतलब है कि जैसे मनुष्य का मांस का अधिकार, और इस अधिकार में चार भाग है। जी 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 जी, व्यापार, राजनीति, व्यापार, समाज और धर्म, ये चार संगठनों, हमेशा ये चार संगठनों हर एक जगह में, चाहे जंगल में जाए वहां भी है। ये चार संगठनों है पृथ्वी, जिनसे लोग करते हैं। एग्जैक्टली, ये जो चार संगठनों शैतान के चाल चलन से चल रहा है, ये चार संगठनों परमेश्वर वादा करता है इसको बिल्कुल नाश करने वाला है, क्योंकि तो सिर्फ बुराई और स्वार्थ में चला, जो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो शैतान का आत्मा है। तो इन सारे संगठनों का नाश परमेश्वर करने वाला है। तो ये बात कहता है यहाँ, ये सारा पृथ्वी हमारे जलन के आग से भस्म करेंगे। जलन के आग, अभी हम समझ में है, परमेश्वर का जलन हमारा जलन नहीं है। हमारा जलन जो है नेगेटिव है, और परमेश्वर का जलन जो है पॉजिटिव है। हमारा जलन है हमारे वास्ते, लेकिन परमेश्वर का जलन है दूसरों के वास्ते। तो ये अलग अलग है। तो परमेश्वर अपने लोगों, अपने सृष्टि के बारे में जलन दिखाएगा, और जलन दिखा के ये सारे जो पृथ्वी, मतलब जो संगठन हो, इसको भस्म करेंगे। यही तो वचन बताता है, मतलब पृथ्वी का नाश के बारे में, सारे संगठनों के नाश के बारे में यहाँ परमेश्वर बोल रहा है। और उसके बाद देखो, लोगों का नाश नहीं है, क्योंकि उसके बाद इस भस्म नाश के बाद लोगों को मैं उनको नया भाषा दिखाएंगे, वो नया भाषा दिखाएंगे, ताकि वो एकता में मेरा नाम, ये मेरा नाम लेके मेरा आराधना करें। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, जो शायद हिंदी में बड़ा उसी तरीके से लाया, मेरे को थोड़ा शक है।
नहीं, वो ये सेम है,
ओके, वचन में पढ़ लेंगे इंग्लिश में। ज़फ़निया 3:8-9,
Therefore wait ye upon me, saith the Lord, until the day that I rise up to the pay, for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdom to pour upon them my
indignation,
even all my fierce anger. For all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy.
Or, ugly.
For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent.
कंधे के कंधे लगाने, वो सब अंग्रेजी में नहीं आता।
वन कंसेंट
विथ अग्रीमेंट, विथ परफेक्ट अग्रीमेंट। तो एकता में, तो ये
अग्रीमेंट मींस
विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आजकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर हम बैठ के कोई बात के बारे में, विषय के बारे में बैठे, तो अलग 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 एक एक का राय है, उस वक्त ऐसा नहीं रहेगा। एक
एग्रीमेंट
मिलना,
दोस्ती,
एक दूसरे के विचार के साथ चलना,
विचार के साथ, एक विचार में
पूरे सभी का एक विचार होगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो कोई अंतर नहीं है।
दूसरे का मतलब मेरा विचार अलग होगा, दूसरे का विचार अलग,
वही झगड़ा है, वैसा नहीं होगा। तो एक ही विचार, विद वन कंसेंट। तो यहाँ भी वचन, एक वचन आठवां बोलता है पृथ्वी के नाश, और नवा वचन कहता है कि परमेश्वर उसके बाद लोगों को देंगे एक शुद्ध भाषा। वो हिंदी में क्या दिया, शुद्ध भाषा
का यहाँ पर
क्या दिया, नवा वचन, उसके बाद मैं लोगों को शुद्ध भाषा दिया
गया,
हाँ शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा क्योंकि शुद्ध भाषा दिया गया है, और वो भाषा इसलिए है कि लोग उस भाषा के जरिए से परमेश्वर को आराधना करें। लेकिन ये शुद्ध भाषा जो है बहुत समय बहुत सारे लोग को इसका अंडरस्टैंडिंग कैसा लिया है, बोलता है इसका मतलब है कि सारा दुनिया वापस एक भाषा को जाएगा में जा जाएगा। लेकिन लेकिन ये
भाषा मतलब आपको ये मन की जो कड़वाहट
नहीं, बाबुल बाबुल के इमारत के घटना पहले एक ही भाषा था, परमेश्वर जब बाबुल के इमारत में आया और बदला सारा भाषा, उसके बाद बदली। लोग क्या सोच रहा है कि ये भाषा बड़ा मुसीबत है, सारे लोगों से बात नहीं कर सकता है, एक 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 खड्डा की जैसा करता है सब दो लोगों के बीच में। तो बोलता है शायद परमेश्वर दोबारा एक ही भाषा लाएंगे दुनिया में, लेकिन हम देखते हैं कि इसका वचन में कोई आधार नहीं है। भाषा तो हमेशा रहेगा, पंजाबी रहेगा, हरियाणवी रहेगा, तमिल रहेगा, चाइनीज रहेगा, उसमें बदलने वाला नहीं है। इसमें कुछ परमेश्वर का नहीं है। ये बात तो हम कैसे मालूम होता है, उसी जफनिया में दूसरा अध्याय 11वां वचन पढ़ो, जफनिया 2:11।
यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा,
हेलो
वह पृथ्वी भर के देवों को भूखे भूखों मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसकी उसको दंडवत करें।
अपने अपने स्थान में, तो इसका मतलब है अपने अपने भाषा में, अपने अपने कलाचार में, मतलब जो जो कल्चर है, अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्थान से दंडवत करें।
ऐसे वो मानते हैं
कलाचार का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भाषा का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सच्चाई और असत्य, सच्चाई से आराधना करना है, तो वो उलझन निकलना है। तो ये शुद्ध भाषा का मतलब है सच्चाई,
सच्चाई
बस सच्चाई, अब प्योर लैंग्वेज। अभी तक इस परमेश्वर को समझना और परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को दंडवत करना लोग तो नहीं समझ रहे, अलग 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 तरीके से कर रहा है, लेकिन उस वक्त परमेश्वर वो सच्चाई देंगे सबको, ताकि सत्यता में एकता में हर एक भाषा रह सकता है, हर एक संस्कृति रह सकता है, उसको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम प्रकृति में देखते हैं लाल गुलाब है, सफेद गुलाब है, दूसरे दूसरे किस्म किस्म के गुलाब है, बड़ा गुलाब है, छोटा गुलाब है, अगर सब गुलाब एक तरह हो जाता था, एक ही रंग हो जाता था, कितना बोरिंग हो जाएगा ना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, किस्म किस्म के रंग, किस्म किस्म के सृष्टि परमेश्वर बनाता है। तो उसी तरीके से लोगों का भाषा, लोगों का संस्कृति कुछ मुसीबत नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लोगों के बीच में सच्चाई होना, हर एक लोग के पास सच्चाई, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अपने अपने जगह में से दंडवत करेंगे परमेश्वर। उससे पहले परमेश्वर क्या करेंगे, सारे झूठे धर्मों और देवताओं को खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, परमेश्वर दिखाएगा अपना शक्ति और खत्म करेंगे ये सारा झूठा देवताओं। तो ये परमेश्वर का योजना के बारे में, क्योंकि परमेश्वर कैसा इन सारे संगठनों को खत्म करेंगे और अपना सच्चाई दुनिया में लाएंगे। अगले 21वां बुजुर्ग हगाई भविष्यवक्ता के मुंह से परमेश्वर का दिया हुआ भविष्यवाणी, हगाई 2:6
क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर जो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थानीय सब को कंपित बनाऊंगा।
और के और साथ
मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जाति मन भावनी वस्तु आएगी,
सब जाति मन भावनी
वस्तुएं आएगी और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भूंगा, सेनाओं के यहोवा के वचन है।
अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और आप निर्णय करो कि बराबर हुआ कि नहीं, पर इंग्लिश हगाई 6:7
God does say, the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all the nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill his Fill this house with glory, saith the Lord of hosts.
देखो, सब देशों का चाहने वाला आएगा, ऐसा आना है. सब देशों का चाहने वाला आएगा. पंजाबी में कैसा है? हागाई 2:6-7
छोड़े रहे चिते मैं फिर आकाश अते धरती इसे जल थल नूं हिला दियांगा नाले मैं सारियां कौमां नूं हिला दियांगा अते सारियां कौमां दे पदार्थ होणगे
सारियां कौमां का पदार्थ होण दे तो चाहने वाला ऐसा आता है डिजायर ऑफ ऑल नेशंस शैल कम क्योंकि दुनिया अभी चाहते हैं तरस रहा है कि कहाँ कब से और कहाँ से आएगा शांति कहाँ से आएगा उद्धार इस सारे कष्ट से कहाँ से आएगा उद्धार और कहाँ से आएगा संतुष्टता हैप्पीनेस ये आएगा सिर्फ एक रास्ता से एक ही पुरुष से प्रभु यीशु मसीह राजा यीशु मसीह के जरिए से तो इस तरीके से जो उनको उनके लिए बड़े आशीर्वाद होंगे जो नहीं पहचानेंगे शुरू में लेकिन बाद में सब लोग पहचानेंगे कि कितना बड़ा बात परमेश्वर प्रभु के जरिए से कर रहा है तो ये बात तो यहाँ दिया गया है कि द डिजायर ऑफ ऑल नेशन शैल कम लेकिन इससे पहले क्या देखता है कि प्रमोशन है परमेश्वर का न्याय प्रकट हो जाएगा परमेश्वर के न्याय प्रकट होते वक्त सच्चाई प्रकट करेगा झूठ रोशनी प्रकट करेगा अंधेरा तो यह है परमेश्वर का न्याय जी बिल्कुल बिल्कुल चौथा है सूखा जमीन ड्राई लैंड सूखा जमीन का मतलब है हम कह सकते हैं समंदर से अलग तो ये द क्लासेस हम कह सकते हैं द क्लासेस नॉट द मासेस ये तो क्लासेस है ये तो सिविलाइज सोसाइटी है यहां से आता है सारा लीडर यहां से आता है सारा जो चलाता है व्यापार जो चलाता है धर्म जो चलाता है राजनीति जो चलाता है समाज दे आर द क्लासेस दे आर अबव सेपरेट जैसा हम देखते हैं भी उन लोगों का बंगला बड़ा है उनके गाड़ी शाड़ी है उनके सिक्योरिटी है उसका और हमारा एक मेल जेल है अलग जैसा लगता है जब हमारा रास्ता में भी चलता है तो सारा खाली करना गाड़ी और वो चलना है तो देखो वो अलग सा जिंदगी जी रहा है ये तो ड्राई लैंड मतलब समंदर से अलग तो इन लोगों सारे लोगों के बीच में परमेश्वर न्याय लाने वाला है कोई नहीं बचेगा ये तो सभी को हिलाएंगे करके परमेश्वर बोल रहा है तो सभी को हिलाने के बाद सभी गिरने के बाद लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है दुनिया अंत हो रहा है उस वक्त दुनिया जो चाहते हैं वो चाहने वाला वो आएगा और वो है प्रभु यीशु मसीह जो क्योंकि लोग बाद में आने वाले समय में इस बात को पीछे में देखते वक्त समझेंगे कि जो चीजों के लिए और जो वस्तुओं के लिए लोग चाहते थे वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आए उनके पास और उस तरीके से ये हागाई के दिया हुआ वचन सच हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या प्रभु यीशु को मांगेंगे क्या मनुष्य प्रभु यीशु को चाहेंगे नहीं कौन है प्रभु यीशु कुछ नहीं जानता थोड़े लोग बोलता है तुम साउथ में बोलता है थोड़े लोग बोलता है तुम्हारा परमेश्वर गरीब परमेश्वर है कपड़ा ही नहीं है देखो कैसे इतना इनका बुद्धि इतना देखो कैसा है हा? तो अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन जो जीने के लिए, संतुष्टता के लिए, शांति के लिए चाह रहा है, तरस रहा है, वो सिर्फ प्रभु यीशु ला सकता है।
आज भी आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसा है आपका परमेश्वर, आपको किस तरह रखा हुआ है, बाकी लोग देखो कैसे हैं, आप कैसे हैं?
अमीर अमीर रखे हैं बाकी सभी लोगों को, गाड़ी शादी है, बंगला है, तुम तो क्या है, नहीं है गरीब वाले तुम
राजाओं का राजा है।
जी 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 जी
आपके पास क्या है?
जी जी
तो ये है समुद्र और सूखी भूमि।
यस 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 यस, ये समुद्र और सूखी भूमि है। तो ये परमेश्वर पूरा का पूरा न्याय करने वाला है, और साथ में प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु आता है, प्रभु यीशु के जरिए से सारा दुनिया का आशीर्वाद भी हो जाएगा। अभी 22वां बुजुर्ग और 22वां भविष्यवाणी जो जकरिया भविष्यवक्ता के मुंह से प्रकट हुआ, जकरिया 6:12-13। जकरिया 6:12-13 है, जो 22वां बुजुर्ग है और 22वां भविष्यवक्ता है। जकरिया 6:12-13।
और उस समय उससे और उस ये कह सेनाओं का जो कहता है कि पुरुष को देख जिसका नाम शाख है।
पुरुष को देख
जिसका नाम
शाख है, हाँ, अपने स्थान से उपकर उपकर मंदिर बनेगा,
अपने स्थान से उपकर यहोवा का मंदिर बनवाएगा।
हाँ, यहोवा का मंदिर बनवाएगा। और
वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा,
महिमा पाएगा
और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की संपत्ति।
इस यहाँ तो बोलता है इसका नाम है शाख। ये शाख जो हम पहला पढ़ा, ये 11:1 एसी के जाड़ से बाहर आ गया ये शाख है, वहां तो हम पढ़ता ईशा के जाड़ से, वो तो यशाया 11:1 हम पढ़ता है। तो ये प्रभु यीशु है, और ये शाख का मतलब क्या है, मनुष्य जाति से जुड़ा, मनुष्य जाति से जुड़ा।
जो बताया कि जो मेरे से शाख जी।
क्योंकि मनुष्य जाति से कैसा जुड़ा, इसलिए इसका नाम है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का सन ऑफ मैन, इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन बना, उस वचन देहदारी हुआ, उस वचन देहदारी हुआ, वो एक मनुष्य बना। तो ये मनुष्य जाति में एक शाख आया, आदम परिपूर्णता, आदम के बाद ये अगले परिपूर्ण दूसरा आदम शाख बना। लेकिन ये शाख के बारे में क्या बोलता है, इस शाख को अभी जैसा पहला आदम जान नहीं दे सका ये सारा दुनिया को, सिर्फ माउस दिया सारा खानदान को, अभी ये शाख, ये नया शाख नया जीवन देंगे। जैसा आपको जानता है ये जाड़ वाले बातों में, जब खेती बाड़ी करता है, कोई नया जीवन देना है, कोई ग्राफ्टिंग करता है, एक शाख ग्राफ्टिंग करता है तो एक नया जीवन शुरू करता है, नया जीवन शुरू। उसी तरीके से परमेश्वर ने ग्राफ्टिंग किया, भाई आदम से जीवन नहीं आया, आदम से सिर्फ मौत आया सारा खानदान को, अभी इस खानदान को जीवन देना है, इसको जीवन देना है। अभी आदम का कोई बेटा से नहीं आ सकता है, अभी क्या करूं, ग्राफ्टिंग करेंगे। जो कोई बेटा नहीं आ रहा है ना, मैं अभी ग्राफ्टिंग करूंगा, मैं एक नया शाख लाके इस जाड़ को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो इस तरीके से परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, शक्ति से मरियम के ऊपर पड़ के एक बच्चा पैदा हुआ, एक औरत जो मनुष्य के साथ संबंधी नहीं हुआ, उस औरत गर्भवती हुआ। लूका 1:35 पढ़ लो,
हमने पढ़ा था
जी, पढ़ लो ये वचन, कितना बारी कितना बढ़िया वचन है। लूका 1:35
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है,
वह पवित्र, जरा देख लो, वह पवित्र जो उत्पन्न होगा तुम्हारे अंदर, इंग्लिश में दैट विच इज बॉर्न, वह पवित्र जो उत्पन्न होगा तेरे अंदर, पढ़ लो, ये है वो शाख। अभी हमको जानता है ना, जब शाख ग्राफ्टिंग हो जाता है ना, शाख से रस प्रकट हो जाता है, सैप, और ये सैप नया जीवन देता है। इसलिए जब ग्राफ्टिंग करता है कोई प्लांट को नया जीवन आ जाता है, क्योंकि उसका सैप अलग है। सैप जानते हैं ना, जी जी, एसएपी मतलब जाड़ों का खून, जैसे हमारे को खून होता है ना, रास, एग्जैक्टली, तो रास आ जाता है। तो उस इस तरीके से ये नया शाख से रास आ गया है पूरा दुनिया को। जाड़ है पूरा दुनिया, शाख आ गया, नया शाख है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु के जरिए से नया रास उत्पन्न हुआ, ये नया खून उत्पन्न हुआ, जीवन, अभी जीवन आएगा सारा, ये जीवन पाया, अभी सारा दुनिया को जीवन तप आएगा।
वो जो हमने वचन नहीं पढ़ा
जी,
आत्मा पानी और जीवन,
जी 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 जी, शायद इसमें कुछ बात है। वही 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 वही, तो यहाँ बात तो देख रहा है ये शाख के बारे में, और ये शाख के बारे में बोलता है कि सारा परमेश्वर का मंदिर बनवाएगा। हाँ, यही परमेश्वर के मंदिर बनवाएगा और सारे महिमा उसके ऊपर होगा, और वो याजक भी होगा और वो राजा भी होगा। इसका मतलब है प्रभु यीशु के काम कैसा होगा, मेल्कीज़ेदेक की तरह, क्योंकि उत्पत्ति में 14:18 वचन में पढ़ता है, मेल्कीज़ेदेक एक अनोख किस्म का एक याजक था, जो इससे पहले और उसके बाद कोई ऐसा याजक नहीं था, जो याजक भी था और राजा भी था दोनों। उत्पत्ति 14:18, तो इब्राहिम उनको दसवांज दिया, इब्राहिम उनसे आशीर्वाद लिया। सोच लो, इब्राहिम इतने बड़ा बंदा है, इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक है, लेकिन इब्राहिम इस आदमी से, इस राजा से आशीर्वाद पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेल्कीज़ेदेक इब्राहिम से भी बड़ा है। तो ये सब बताता है एक बात कि प्रभु यीशु के महिमा परमेश्वर के राज्य में, वो ना सिर्फ एक राजा होगा बल्कि वो एक याजक भी होगा, महायाजक मतलब बिचवाई होगा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। हमेशा हमेशा आप कहीं भी मंदिर जाओ, याजक का काम क्या है, लोगों और परमेश्वर के बीच में करना है, मेल मिलाना, तो बिछवाई है। तो यही तो बात तो यहाँ देखता है प्रभु यीशु के बारे में। यहाँ दिया गया है 22वां भविष्यवाणी और 22वां बुजुर्ग जकरिया की मुंह से, अभी 23वां बुजुर्ग, 23वां भविष्यवाणी जो मलाकी आखिरी किताब, पुराना नियम के आखिरी किताब में पहुंच गया है, मलाकी 3:17 वचन,
मेरे लिए होंगे, अर्थात मेरी पास मैं उन्होंने बख्श देंगा जिन्हें कोई मनुख पाप नहीं सेवा तुम्हारे पुत्र नु बख्श दिंदा है।
तीन का सतारा
सेनाओं को यह वही कहता है जो दिन मैंने आया है उस दिन वे लोग मेरे वर्ण मेरे निज भाग ठहरेंगे तो मैं उनमें से ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे।
यहाँ तो 23वां भविष्यवाणी में यहाँ परमेश्वर बोल रहा है अपने निज भाग के बारे में, इंग्लिश में When I will make up my jewels, अंग्रेजी में देखा तो When I will make up my jewels, ये precious jewel, ये जो खजाना परमेश्वर का खजाना निज बाग, ये है उनके चेले, प्रभु के चेले, प्रभु के भक्तों 144,000, ये परमेश्वर के निज बाग है। सिंपल लैंग्वेज में हम सभी के पास खानदान है लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर के लिए अभी तक खानदान नहीं हुआ। खानदान बनना आसानी काम नहीं है, कान लेवल होना चाहिए तभी तो खानदान हो सकता है, है ना। तो जब परमेश्वर ऐश्वर्य स्वभाव में है उनके खानदान भी कौन से स्वभाव में होना चाहिए, ऐश्वर्य स्वभाव में होना चाहिए। तो परमेश्वर इतने दिन इंतजार कर रहा है अपने लिए एक खानदान बनाने के लिए, अभी उसका खानदान तैयार होने वाला है। मेरा निज बाग, मेरा निज बाग, मेरा खजाना जहां परमेश्वर का खुशी होगा, जो परमेश्वर के ऊपर सुप्रीम लव रखता है, उनके पास प्यार है, अपने खानदान के लिए प्यार है, अपने लोग के लिए प्यार है, दुश्मनों के लिए भी प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसके ऊपर रखा है, पिता परमेश्वर के, परमेश्वर का खानदान। तो ये बात तो यहाँ दिया गया है इस वचन में मलकिया में कि परमेश्वर बोलता है कि वो अंत आने से पहले, वो भयंकर अंत आने से पहले, क्योंकि एक कलेश आने वाला है, कलेश से पहले मैं मेरा निज बाग लेके जाऊंगा इस भूमि से
पहले,
उससे पहले मैं लेके जाऊंगा, वो मैं नहीं छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ दूंगा इस कलेश में, नहीं कलेश में नहीं छोड़ेगा मेरा कलेशिया, मैं कलेश आने से पहले लेके जाऊंगा। तो कलेश से पहले कलेशिया खत्म हो जाएंगे, कलेश का कलेशिया का उठाना वो कलेश से पहले है। आई विल स्पेयर देम, अंग्रेजी में कहता है या हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ अंग्रेजी में पढ़ता हूँ एंड दे शैल बी माइन सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स इन द डे व्हेन आई मेक अप माय ज्वेल्स एंड आई विल स्पेयर देम एज ए मैन स्पेयर हिज ओन सन दैट सर्विस हिम। देखा अनुवाद भी
बहुत फर्क है।
ऐसा करें तो क्या हाल है ये, अगर आप मौका मिले बाइबल सोसाइटी पूछो ये ऐसा करें तो क्या, ये क्या फायदा है, तुम अलग संदेशा दे रहा है हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी वालों क्या क्या की पढ़ रहा है, क्या क्या की समझ रहा है, और जो सच्चाई अलग है और ये जो मिल रहा है अलग है, और वो अलग अलग हिंदी बैठ वो अलग और ये अलग ये भी है। देखो तो ये बात तो हम याद में रखना है, याद में रखना है परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के शब्द हम नहीं बदल सकता है, परमेश्वर के शब्द उसी असली में रखना है। तो ये बात तो यहाँ देख रहा है क्योंकि ये सारा दुनिया के ऊपर अभी एक 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 कलेश, मेरे निज बाग ठहरेंगे, मेरे खजाना ठहरेंगे, मैं इनके ऊपर रहम दिखाऊंगा, मैं इनके ऊपर रहम दिखाऊंगा, मैं उनको कले इनको उस दिन आने से पहले मैं उनको उठाऊंगा। वचन भी है लूका 21:36 लूका 21:36
जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
तुम योग्य बनो कि तुम इस स्थिति से बचाओ, क्योंकि परमेश्वर बचाए हर समय प्रार्थना
करो।
इसका मतलब करते रहना, बाथरूम भी जाते वक्त, पकाते वक्त, ऐसा करना है? नहीं। हर समय प्रार्थना करने का मतलब क्या है? हम ऐसे दुनिया में अभी रह रहे हैं जब हर समय पाप में गिरने का गुंजाइश है, इसलिए हम ध्यान में रह के हमारा पाप का कबूल और इकरार का प्रार्थना करते रहना, ताकि हम पवित्र रहे और हमारा सफर आगे बढ़ सकता है। तो हर समय प्रार्थना में रहो का मतलब क्या है कि हम ध्यान रहना है कि हम बहुत बुरे दुनिया में रह रहे अभी, और उसके बीच में हम कैसे लड़ाई लड़ना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो प्रार्थना का जो हथियार जो परमेश्वर हमारे को दे दिया है, कि हम परमेश्वर के नजदीक हो जाए, कि परमेश्वर से हमारा पवित्रता जारी करें सब प्रभु के लहू के जरिए। जैसा आपको जानता ना, पहला योहन्ना पहला अध्याय और नवा वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को इकरार करते हैं, वचन में पढ़ो, पहला योहन्ना पहला अध्याय नवा वचन,
यदि हम अपने पापों को मानते और वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
यदि सबसे खास है यदि,
यदि
यदि नहीं करें नहीं मिल सकता, अशुद्धि रहेगा, पापी ही रहेगा। यदि यदि तो इसलिए कि हम ऐसा दुनिया में रह रहे हैं आजकल कि हर वक्त तो हम हर वक्त प्रार्थना की याद में रहा तो अच्छा, इससे बचेंगे। तो यही परमेश्वर बोलता है कि प्रभु बोलता है कि हर वक्त प्रार्थना करो। इसका मतलब है तुम्हारे को इस स्थिति में लड़ने के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए एक हथियार, कि ये प्रार्थना का इस्तेमाल करो और आप ध्यान में रहो कि आप कैसे कैसे चल रहा है, आपके आंख, आपके मुंह, आपके हाथ, आपके दिमाग कैसे चल रहा है इस दुनिया में, जहां जहां आप जाते हैं, आपकी जिंदगी जैसे जैसे गुजरते हैं, तभी आप काबिल हो जाएगा उठाने के लिए। तो कलीसिया के बाद आप पढ़ लिया ना, वाचा बांधते हुए बलिदान चढ़ाना, और हमारा दान तो पवित्र बलिदान होना चाहिए। जब तक हमारा, अगर हमारे कोई पाप जो हमारा हिसाब में है, जो परमेश्वर से क्षमा नहीं मिला, जो कोई बलिदान हम चढ़ा तो अशुद्ध बलिदान होगा। तो हर वक्त अच्छा बलिदान परमेश्वर का जो अपना सकता है बलिदान, अगर हम चढ़ाना है तो हम पवित्र होना चाहिए, ताकि हमारा बलिदान भी पवित्र हो जाए। तो ये बात तो याद में रखना। तो ये बात तो यहाँ देखता है कि लूका में 21 और 36 में बताता है कि हर वक्त आप प्रार्थना में रहो और क्या बोला, जागते रहो, वॉच चीयरफुल, अभी बोलता है, बोलो 21:36 क्या दिया शब्द, 21:36 हाँ, क्या जागते रहो ना, जागते रहो बराबर है इंग्लिश में, वॉच ही देयरफॉर इसका मतलब है देखते रहो। क्या देखते रहो? तुम क्या कर रहे हो दे रहो, देखते रहो और हमेशा प्रार्थना करो, समझ गया? वॉच ही देयरफॉर, प्रे ऑलवेज, अंग्रेजी में आता है, दैट यू मे बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप। तो वॉच ही देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज का मतलब है आप हमेशा जागते रहो, देखते रहो कि आप कैसे चल रहा है, क्योंकि हम बहुत बलिहीन पात्र है, हम बहुत कमजोर है, बहुत सारे कमजोरी में गिर जाते हैं, लेकिन हमारा कमजोरी को हम अगर इकरार करते हैं तभी हम बच जाते हैं। तो ये बात तो यहाँ प्रभु कह रहा है। तो ये अंतिम बात है कि इन इस 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 निज बाग प्रभु के निज बाग प्रभु लेके जाएगा इस कलेश शुरू होने से पहले। ये वचन बोलता है तुम बच जाएंगे, वर्दी टू एस्केप अंग्रेजी में आता है, हिंदी में क्या दिया
21
आने वाली घटना
और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य
आने वाले घटना बसते बचना वर्ड नहीं आ गया इधर
आने वाली घटनाओं से आने वाली घटनाओं से बचने
बचने बचने
और मनुष्य के सामने खड़े होने की योग्य बने
बचने आ गया ना बचने आ गया तो बचने तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उधर है। तो ये वफादार वाले बचेंगे कलेश से बचेंगे। 144,000 वहाँ फंसने वाला नहीं है, वचन साफ साफ बता रहा है। तो यहाँ खत्म होता है पुराना नियम, 23 ही बुजुर्ग हो गया है, 24 बुजुर्ग होना चाहिए, एक 24वां बुजुर्ग होना चाहिए, यहाँ 23 ही है, एक 24वां भविष्यता चाहिए। आखिरी भविष्यता कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना मुंह से आया था आखिरी भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु के परिचय करते वक्त यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, यूहन्ना 1 और 29
दूसरे दिन उसको यीशु ने अप्रिय और आते देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है।
हाँ बड़ा सच्चाई यूहन्ना ने बोला है लो देख ये परमेश्वर का मेमना है। ये भी मेमना का मतलब है बकरी का बच्चा। क्या बकरी का बच्चा है मेमना है ना। तो लो ये परमेश्वर का मेमना है जो वचन पढ़ो
जो जगत के पाप को उठा ले जाता है।
जगत का पाप मतलब अनेक
सिर्फ पाप
अंग्रेजी में हु टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड नॉट सिन नोट करना है द लैम दैट टेकेथ अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड नॉट द सिंस ऑफ द वर्ल्ड
यही पर लिखा हुआ पाप ही लिखा हुआ है ना। जगत
का नहीं मैं नोट कर बताता हूँ आपको। यस यस जगत का पाप तो हिंदी में सिंगुलर और प्लोरल भी पाप कह सकता है। हिंदी में कुछ फर्क नहीं है, हिंदी में पाप भी सिंग बोल सकते हैं, पाप भी प्लूरल भी बोल सकते हैं। जगत का पाप अगर बोले तो वो प्लूरल का मीनिंग है, आदमी का पाप बोले तो वो सिंगुलर का मीनिंग है ना। लेकिन इंग्लिश में द सिन ऑफ द वर्ल्ड बोले तो आश्चर्य की बात है, सिंस ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। वर्ल्ड में इतने लोग हैं और इतने लोग का एक ही सिन है, अंग्रेजी में एक ही सिन है द सिन ऑफ द वर्ल्ड। ये सिन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है हम जान गया है कि एक ही पाप से शुरू हुआ। रोमियो में दिया है एक पाप से आया मौत। एक आदम का किया हुआ पाप का मजदूरी है मौत, और मौत आया और ये फैल गया सबके ऊपर, ये सबके ऊपर फैल गया। तो ये फैला हुआ स्थिति को अभी बचाने के लिए, चुड़ौती देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र मेमना भेज दिया। अभी उस वचन देहधारी और मनुष्य बना, और जब वो कलवारी के क्रूस में मरा आखिरी सप्ताह खत्म हो गया। इट इज फिनिश्ड। क्या फिनिश? ये ट्रांसैक्शन, ये छुड़ौती, इट इज फिनिश्ड। तो ये बात याद में रखना है। बपतिस्मा यूहन्ना ने कहा ये है परमेश्वर का मेम जो दुनिया का पाप उठाता है। दुनिया का पाप मतलब द सिन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ देखें। तो ये सिन जो आदम से आया और सारी जाति के ऊपर फैला, प्रभु यीशु ने अपने जान एक आदमी के लिए दिया, सिर्फ सिर्फ आदमी एक आदमी के लिए दिया, आदम के लिए दिया, और इसलिए कि आदम हम सारे का बाप है, और इसलिए कि हम सारे आदम के खानदान हैं, हमारे ऊपर असर पड़ता है। पहला असर पड़ा पाप का और मौत का, और दोबारा असर पड़ेगा जो हम देखेंगे उद्धार, और दोबारा असर पड़ेंगे उद्धार भी, यहां तो हम देख रहे हैं। तो यहां बात तो यहां हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15:22 पहला कुरिन्थियों 15:22 पहला कुरिन्थियों 15:22 पहला संदेश 15:22
जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाए।
अभी समझ गया है, जैसे आदम से और आदम के द्वारा सब मर रहे हैं, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह के चुड़ौती से उसी सब जो उसमें फंसा जी उठेंगे। ये है परमेश्वर का सिद्धांत, ये है सुसमाचार, ये है परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का रहम, और परमेश्वर जो मनुष्य के लिए दिया दिखाया प्यार है। तो ये बात तो हम देख लेंगे। तो इधर से खत्म होता है 24 बुजुर्ग, और 24 बुजुर्ग खत्म होता है इधर, और अभी हम थोड़े वचनों को पढ़ के हम खत्म कर लेंगे। और ये बात यशाया 30:26 यशाया 30:26
उस समय यहोवा अपने प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उसकी चोट को चंगा करेगा, और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा।
ये एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी वचन जिसके अंदर मैं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ सूर्य की बात हो रहा है और चंद्रन की बात हो रहा है। ये सूर्य और चंद्रन क्या है, दोनों रोशनी है, एक तो रोशनी तेज रोशनी है और दूसरा रोशनी अपने रोशनी नहीं है, प्रतिबिंब का रोशनी है। चंद्रन प्रतिबिंब का रोशनी है और हल्का रोशनी है, और ये सूर्य का रोशनी अपना रोशनी और तेज का रोशनी है। तो सूर्य का मतलब है सुसमाचार, नया नियम, जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला, सारे शब्दों जो बताया, सारे सारे परमेश्वर का योजना, तो बहुत ही तेज तरीके से हम समझ गया, लेकिन उसी योजना और उसी सुसमाचार प्रकट हुआ पुराना नियम में, जो समझ नहीं पा रहा है, जो बहुत हल्का सा है, जो चंद्रन की जैसा है, जो प्रतिबिंब है, ये सारे बातें मतलब जो चिन्ह के भाषा में है, जो नमूना के रूप में दिखाया है, जो भविष्यताओं के मुंह से निकला, जो स्वर्गदूतों के मुंह से निकला, जो तस्वीर के रूप में दिखाया गया है, परचाइयां जो है, ये सब जो है हम समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, तुरंत हम समझ नहीं लेते हैं। जैसे जैसे सूर्य का रोशनी तुरंत पड़ जाता है, लेकिन चांद का रोशनी हल्का सा है, तो उसी तरीके से पुराना नियम है चंद्रन और नया नियम है सूर्य। वचन इधर क्या बोलता है, एक समय आएगा जब चंद्रन का रोशनी सूर्यन नहीं सूर्यन के रोशनी की जैसा समझेंगे, वही दिया है, जो चंद्रन का रोशनी सूर्यन के रोशनी के के के, के सम्मान। इसका मतलब क्या है, आजकल बहुत सारे लोग और मसीही पुराना नियम का महत्व नहीं समझ रहा है, क्या सोचता है, पुराना नियम एक इतिहास का किताब है, जो हुआ इज़राइल को घटना तो हुआ पढ़ेंगे, परमेश्वर ऐसा रखा उन लोगों को, इधर दो तीन छोटा छोटा सबक हम सीख लेंगे। लेकिन हम जानते हैं उसके अंदर कितना बड़ा खजाना है सच्चाई का। और ये एक वक्त आएगा जब ये प्रकट हो जाएगा, वो जितना नया नियम परमेश्वर का वचन है, पुराना नियम भी परमेश्वर का वचन है, बेस और अपना वचन है। तो आजकल बाइबल सोसाइटी भी क्या करता है, बाइबल आता है नया नियम प्लस क्लास भजन संहिता, बस यही बाइबल है। ये बाइबल नहीं है, ये बिल है, बाय बिल चाहिए। पुराना नियम भी चाहिए, नया नियम दोनों साथ में 67 किताब होना चाहिए, तभी तो बाइबल कह सकता है। उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन एडिटिंग इसलिए करता है क्योंकि लोग तो महत्व नहीं समझ रहा पुराने नियम का कितना महत्व है। लेकिन ये वचन बोलता है कि चंद्रन एक सूर्य के समान होंगे, तो ये इसका मतलब उठेंगे, मतलब जो सच हो जाएगा ये फुलफिल हो जाएगा। अभी ये बात अभी बुजुर्गों के बारे में भी वचन में हम पढ़ते हैं, थोड़े बुजुर्ग जो वचन में हैं जो हम पहचान लेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:5 प्रकाशित वाक्य 5:5 बुजुर्ग आके रो रहा है इधर, योहन्ना ना रो करके बोलता है, देखो पीछे देखो, यहूदा का शेर जीत, बब्बर शेर ने जीत लिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो बुजुर्ग, ये दूसरा बुजुर्ग है, आपको याद होगा याकूब के में निकला शीलो के बारे में, यूदा से निकले, यूदा से ये क्या बोलता है उसको, हाँ वो नहीं निकलेगा, सेप्टर एग्जैक्टली, यस यस यस,
जब तक शीलो लाए तब तक शांति का राज्य।
जी जी, तो ये बात बताता है दूसरा बुजुर्ग, और दूसरा बुजुर्ग यहाँ बात करता है योहन्ना से, बोलता है यूदा के पर शहर के बारे में। और अगले बुजुर्ग जो हम वाक्य हमने पढ़ लिया है प्रकाशित वाक्य 7:13 जहाँ होशिया का बुजुर्ग है जो बताता है वो बड़ा भीड़ के बारे में, बड़ा भीड़ के बारे में वहां करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 24 भविष्यवाणियों जो परमेश्वर ने प्रकट किया अपने राज्य में, प्रकट हो जाएगा लोगों को कि हमारा परमेश्वर का गुण क्या है, हमारा परमेश्वर का प्यार क्या,
डालने के योग्य कोई ना मिला।
तो 4:10
क्या 5:10
किया, 4:10
4:10
पिता परमेश्वर को जाता है और साथ में महिमा प्रभु यीशु को भी जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का जरिया है, हरेक काम प्रभु यीशु के जरिए से ही परमेश्वर करता है। इंग्लिश में ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ गॉड्स एवरी विल एंड प्लान, एग्जीक्यूटर, तो परमेश्वर जरिया है। तो पिता परमेश्वर ही प्रभु यीशु को ये महिमा मिलना पिता परमेश्वर ही चाहता है। यूहन्ना 5:23 वचन, यूहन्ना 5:23 देखा, पहला तो फर्क जानना है, पिता कौन जानना है, पुत्र कौन जानना है। पिता जानने के बाद पुत्र को नहीं भूलना है, पिता जानने के बाद पुत्र को नहीं भूलना है। और पिता का चाहत क्या है कि वही जितना सम्मान उसको मिलता है उसी के हिसाब में किसको मिलना है,
पुत्र को।
तो हमारे को कितने परमेश्वर है, दो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। वजन संहिता 110:1 पढ़ लो। गगन सनीसा 1:10:1
मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये वाणी ही है तू मेरे दाहिने हाथ
नहीं नहीं कातिल मार डाला वचन उधर द लॉर्ड 110:1 बराबर कि जितने इनके सृष्टि उनके पास आके दंडवत करते हैं जितने उनके सृष्टि उनको आराधना करें वो उसी के समान अपने पुत्र को भी आराधना करें तो यहाँ तो पढ़ते हैं अगले
लिखा हुआ इसमें प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे
दहिने इंग्लिश में अब एक प्रभु तो कैपिटल लेटर एक प्रभु तो कैपिटल एंड लोअर लेटर तो द लॉर्ड कैपिटल LORD स्मॉल LORD द लॉर्ड से परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है लेकिन पिता परमेश्वर का इच्छा है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी उसी तरीके से उसी सम्मान का वो आराधना मिले और सम्मानता से आदर मिले। आखिरी वचन पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य चार आठ ये चार प्राणियों परमेश्वर ये चार प्राणियों का मतलब है परमेश्वर का चार स्वभाव गुण शक्ति प्यार न्याय और ज्ञान ये चार परमेश्वर का स्वभाव गुण। अभी ये चार स्वभाव गुण यहाँ दिखाया है कि एक एक को किसम के छे अगर चार स्वभाव चार प्राणियों का कुल मिला के उनके पंख का हिसाब से ले तो 24 इसका मतलब क्या है परमेश्वर का जो स्वभाव गुण आगे बढ़ा बढ़े तो आगे बढ़ना है तो पंख क्या करना है उड़ना पंख काम करना है जैसा पंख काम करता है आगे बढ़ सकता है तो ये क्योंकि ये 24 भविष्यवाणी में बरा हुआ है परमेश्वर दया और परमेश्वर का रहम मनुष्य जाति के लिए और जब ये सच हो जाता है प्रकट हो जाएगा परमेश्वर का प्यार परमेश्वर का शक्ति परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का ज्ञान। तो ये चार जो प्राणियों का छे पंख का मतलब है ये 24 बुजुर्गों लेकिन इसका एक पॉइंट भी है इसका मतलब है ये 24 बुजुर्गों अगर आप पढ़े छे प्यार दिखाना है छे न्याय दिखाना है छे शक्ति दिखाना है और छे ज्ञान दिखाना है लेकिन ये आपका होमवर्क ईश्वर के कृपा से हमने पढ़ा ये 24 बुजुर्गों और ये 27वां पाठ हमने खत्म कर लिया। परमेश्वर को हम शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ परमेश्वर के से हम आशीर्वाद मांगते हैं परमेश्वर ही आप सभी को आशीर्वाद करें आमीन।